તારીખ 11/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 728 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 21.
એકત્વ કહેતા, ક્યોંકિ એ મીઠા અનુભવ હૈ जिसमें व्याप्त व्यापक पढ़ा अनुभव में आता है, ये मिथ्या अनुभव है। जब को ज्ञानी को आत्मा में व्याप्त व्यापक पड़ा है, देह में अव्यापक पड़ा है। आत्मा में तो व्याप्त व्यापक पड़ा है और देह में अव्यापक पड़ा है, देह की उपस्थिति में भी। ऐसे देह का यथार्थ स्वरूप मैंने भिन्न स्वरूप, यथार्थ माने क्या, देह तो देह है लेकिन देह का भिन्नपणा, ये इसका भिन्नपणा जानना, ये इसकी यथार्थ इसका स्वरूप जाना है। भिन्नपणा जाना मतलब जानकारी का विषय नहीं है, भिन्नपणा अनुभव में आता है। भिन्नपणा अनुभव में आता है तो देह पर ममत्व नहीं रहता, ये मेरी पर्याय है ऐसा ममत्व। आत्मा का एक पड़ोसी है ये शरीर है, ये हमारी आत्मा का एक पड़ोसी है। कभी सीधा भी चलता है तो कभी उल्टा भी चलता है, पड़ोसी का तो ठिकाना नहीं है कभी कैसा चलेगा, सीधा भी कभी चलेगा तो कभी उल्टा भी चल सकता है। ऐसा देह का यथार्थ स्वरूप शुरू से ही प्रथम से ही जान करके और इसका ममत्व छेद करके, ममत्व कब छूटता है कि भिन्नत्व अनुभव में आता है, तो भिन्नत्व अनुभव में नहीं आता है तो ममत्व छूटना असंभव है, क्योंकि तो अनादि से जिस जिस देह को धारण किया है वो सभी देह में उतना आत्मत्व कर लिया है, जिसकी कोई हद नहीं उतना कर दिया है, बेहद किया है। इसका ममत्व छेद करके नीर स्थिरता को प्राप्त हुए हैं, नीर स्थिरता को स्वरूप में स्थिरत्व प्राप्त किया है, स्वरूप में स्थिर होकर के सुखमुख योग में अपना स्वरूप का अनुभव किया है। ऐसा करना ये ज्ञानी का मार्ग है, स्वरूप स्थिरता में आना वो ज्ञानी का मार्ग है। निस्थिरता को अथवा ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रकृति को प्राप्त हुए हैं, दोनों का एक अर्थ दिया है। निस्थिरता को अथवा ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रकृति, ज्ञानी तो ऐसे होते हैं जिसको देह से भिन्नता बढ़ चुकी है, कोई और जो स्वरूप में स्थिर होते हैं, स्वरूप की स्थिरता को जो प्राप्त होते हैं ऐसे ज्ञानी। अथवा तो ज्ञानी के कहे हुए मार्ग पर चलने की चलने का जिसका निर्धारण है उसको भी देह का उतना महत्व नहीं रहता जितना सामान्य आम मनुष्य को रहता है, सामान्य मुमुक्षु को रहता है उतना उसको नहीं रहता है। विशिष्ट बात वो है उसमें, जिसको ज्ञानी के मार्ग पर चलना है स्वच्छंद से नहीं चलना है, उसके बताए हुए क्रम को अनुसरण करना है, उसमें प्रथम ही मोक्ष का लक्ष्य होता है। क्रम में तो प्रथम ही मोक्ष का लक्ष्य होता है, तो उस ऐसे मार्ग के क्रम पर जो चलने वाले हैं उनको भी इतना देहाध्यास नहीं होता जितना सामान्य मनुष्य को या सामान्य मुमुक्षु को होता है, उतना देहा ज्ञान उसको नहीं होता, योग्यता में उतना फर्क पड़ता है। ऐसा जीव, वही जीव ये मरण काले भी शरण सहित है, उसको मरण काले शरण है। ज्ञानी को अपना परमात्मा स्वरूप शरण है, और ज्ञानी के मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी को पहचाना है, इसलिए उनको ज्ञानी शरण है।
वाह,
क्या
आत्म
स्वरूप नहीं जाना हो और ज्ञानी को पहचाना है तो मरण काल उनको सामने आ जाएगा, तो उनको शरण है। तो उसने उसने परमात्मा का दर्शन किया है। परमात्मा का दर्शन दो जगह होता है, एक अपने स्वरूप में और एक सजीवन बोलते हैं, और दो ही शरण है, तो उनको उतना दुख नहीं होता है जितना सामान्य मनुष्य को देश में दुख होता है। ज्ञानी की पहचान का ही बहुत बड़ा लाभ है कि उसका मरण नहीं बिगड़ता, सम्यक दृष्टि का तो मरण नहीं बिगड़ता, लेकिन ज्ञानी को पहचाना, ज्ञानी के संग में गया तो मरण नहीं बिगड़ा है। जगत के बताते जगत के सर्व प्राणी को मरण शरण रहित है, मरण है वो शरण रहित है, जबकि इन दोनों को मरण शरण सहित है। ये बात है, वो किस प्रकार से वो सर भाई ज्ञानी को पहचानोगे तब तो ये बात तो बराबर समझ में आएगी कि क्या चीज होती है। वैसे तो ज्ञानी मनुष्य शरीर में दिखने में आता है, उसकी शक्ल भी सामान्य मनुष्य की जैसी होती है, वैसे मुखाकृति भी सामान्य मनुष्य की होती है, वैसे ज्ञानी की होती है, आंख कान नाक सब ऐसा ही होता है। फिर भी ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि क्यों होती है, ज्ञानी की पहचान होती है, परमेश्वर बुद्धि क्यों होती है। स्वाध्याय में तो बात चली थी कि इसके अंतर परवर्ती रूप जो हृदय है उसमें विराजमान जो निज परम तत्व है वो इससे अभेद है, परिणति और परमात्मा अभेद है, इसके अनुभव में तो अभेद है, उनका दर्शन होता है। तो ये बाह्य दिखाव दिखाव है, वो नजर में नहीं रहता, क्योंकि नजर वहां से छूट गई, देह से नजर छूट गई और गहराई में अंतर में नजर पहुंची, तो उन्होंने वहां परमात्मा का दर्शन किया। तो परमेश्वर के दर्शन से, यथार्थ दर्शन से, जैसे अपना भवभ्रमण छूटने की प्रतीति आती है, ऐसी प्रतीति ज्ञानी के पहचान में भी आ जाती है। अब मेरा भवभ्रमण नहीं है, एक बछड़े को भी छोड़ते हैं सांप को, वो जमीन पर टिकता नहीं है इसके पैर, इतना उत्साह उसको रहता है, तो अनंत काल से बंधा हुआ आत्मा को छूटने का एहसास आता है, छूटेगा तो आगे जा करके, लेकिन विश्वास तो आ जाता है, प्रतीति तो आ जाती है, कितना उत्साह आता होगा, यह जीव फुला नहीं समाता है। उसकी जो उत्साह है उस भीतर में समाई नहीं रहती, समाप्ति नहीं, परिणाम बाहर छलकती है, ये हो जाता है।
સંકેત મને નથી કહ્યું, આપને સંકેત છે સમજીને એક વાત કરું, અને આપને સંકેત છે મને સીધા બેસી ગઈ, મેં ગુરુ માન્યા આપને, હવે મારું હૃદય સંકેત પામ્યા વગર આપનો હૃદય સંકેત છે માનીને પછી કેટલું ઉલ્લાસ આવે કે વાછડાની પડે જ્ઞાની સંકેત હોય.
જ્ઞાની ને પહેચાને એ પેલું સંકેત લીધું છે 751 માં તો બીજ વાયુ એટલે સંકેત નો સત્વ
આવ્યું
પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ. પરોક્ષ કરવા લેવાની જરૂર છે. 17મી ગાથા શું બોલો?
હા,
કયો શબ્દ વાપરો છો? 17મી ગાથામાં કયો શબ્દ?
ભગવાન ગોપાલ સર
આત્મસિદ્ધિની 17મી ગાથા
છે.
આત્મસિદ્ધિ વચ્ચે સદગુરુ લક્ષ સંકેત તેને ભાગ્યો કારણ ગણે પ્રત્યક્ષ લીધું છે. પરોક્ષ લીધું છે, પ્રત્યક્ષ લીધું છે, પ્રત્યક્ષ લીધું છે, પ્રત્યક્ષ કારણ છે સંકેત. નાની જુએ છે અને સંકેત નું બીજ વવાઈ ગયું છે, આમાંથી સંકેત ઉગવાનું છે. આ બીજ નિષ્ફળ જવાનું
એટલે મિથ્યાત્વનું ઘટર શરૂ થઈ ગયું. મિથ્યાત્વનું ઘટર શરૂ થઈ ગયું.
દર્શન મોનો અનુભાગ થકાન તૂટી ગઈ
નહી
ચીજ છે. ચંપકભાઈ એ મોક્ષ ના જ્ઞાન માં આવેલી ચીજ છે કે આ પરમાત્મ દ્રવ, આ પરમાત્મ પરિણતિ સ્વરૂપ, આ સ્વરૂપ, આ સ્વરૂપાકાર પરિણતિ એનું નામ જ્ઞાની છે. શું જ્ઞાની? કોનું નામ છે? જ્ઞાની શરીર છે, જ્ઞાની વિકલ્પ છે, એમનું જે અંદર મૂળ સ્વરૂપ છે અને એ સ્વરૂપાકાર પરિણતિ છે એ જ્ઞાની છે. એ તો સ્વરાકાર, સ્વરૂપાકાર, પરમાત્મા સદ્રશ આકાર છે, તદાકાર પરિણતિ છે ને. તો પરમાત્મા છે તે અંદર માં મૂળ, એટલે જ્ઞાન માં આવ્યું છે. રાગ માં આવ્યું છે નહીં પણ જ્ઞાન માં આવ્યું છે. એટલે પરમેશ્વર બુદ્ધિ રૂપ પરમ વિનય લીધો છે. જ્યાં સુધી એવી પરમ વિનય માં પણ ન્યૂનતા હોય છે ત્યાં સુધી પદાર્થ નિર્ણય થતો નથી, સ્વરૂપ નિશ્ચય થતો નથી. તો સમય દર્શન થવાનો પ્રશ્ન નથી. એ તો વચ્ચે નો સ્ટેજ છે સ્વરૂપ નિશ્ચય નો, સ્વરૂપ નો ભાવ ભાષણ. 254 માં ક્રમ લીધો છે. ક્રમ થી વિચારીએ તો 254 માં શું વાત છે? પહેલે મોક્ષ હો, મોક્ષ કે લીએ યત્ન કરના, પર મોક્ષ કે પરિણામ મે અકુલાત મનવણ પૂંજન હોના, ઓર સ્વચ્છંદ કે હાનિ કે લીએ અપને દોષ કો દેખતા, એસા અવલોકન અધિક ચલતા હૈ તો ફિર ઉસકો તીન પ્રકાર કે જો પરિણામ હૈ तो इसकी योग्यता के बाधक कारण है. एक जगत के जगत में कहीं भी उसकी सुखेच्छा रहेगी हो तो ये योग्यता को रोकेगा. क्योंकि मेरे में आनंद है, मेरे में परम सुख है, वो बात उसको निश्चय में आएगी नहीं. उनका निश्चय पड़ा है कि कहीं ना कहीं मेरा सुख है. आलोकनी अल्पपन सुखेच्छा योग्यता में बाधक कारण. પરમ વિનય નહીં હોના, પરમેશ્વર બુદ્ધિ નહીં હોય. दूसरा युद्ध का रूप कहना है और भाव भाषण में पदार्थ का अनिर्णय भाव भाषण नहीं होना योग्यता रूप में तीसरा कारण ये तीन कारण का अभाव हो गया उसको समय दशम गारंटी क्रम का पत्र दिया है ऐसा क्रम चलना चाहिए मुमुक्षु को यहाँ से क्रम चलना चाहिए अपना पूर्णता का लक्ष्य हो मोक्ष का लक्ष्य हो और इस लक्ष्य के कारण से जो फोर्स उत्पन्न हुआ उसे ले लिया शीघ्रता शीघ्र हो जाए मेरा काम शीघ्र होना मेरा काम शीघ्र थोड़ा से हो जाना ये जो फोर्स चालू हो गया इसके लिए वो अपना अवलोकन तो चालू हो ही जाएगा इतने स्वरूप प्राप्ति की तीव्र भावना आती है कि अवलोकन चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा कोई सिखाए नहीं सिखाए प्रश्न नहीं तो अपना जो दोष के प्रति उनका जो रस है वो टूटता जाएगा दूषित परिणामों का रस टूटते जाएगा तो विभाव की ताकत है वो टूटते जाएगी दर्शन मोह की ताकत टूटते जाएगी फिर ये तीन कारण का अभाव होना चाहिए इसका मार्गदर्शन दे दिया ये 254 पत्र बिल्कुल क्रम के लिए ही है क्रम सूचित पत्र इस क्रम से मुमुक्षु आगे बढ़ सकता है बढ़ता है उसमें क्रम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पहले दूसरा कुछ कर लो पदार्थ निर्णय करने के लिए पहला मैं शास्त्र पढ़ लो 144 में गाथा पहला पढ़ो तो मुझे मिल जाए या लक्षण लक्षण की चर्चा को पकड़ लू तो मुझे भावभाषण हो जाए ये होने वाला इस क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा पर जिसका प्रवेश नहीं है प्रारंभ नहीं हुआ है इसके नीचे की मुमुक्षु की भूमिका है तो इनके लिए थोड़ा ज्ञानी को विचार करके मार्गदर्शन हो देते हैं कि वो इस प्रकार के अवगुण ज्यादा है इस प्रकार की क्षति ज्यादा है तो उनको लाइन पर ले आते हैं तो वो बात तो रही ज्ञानी की वो सामान्य दूसरे को मन पता नहीं चलता है कि किसको क्या कैसे लाइन पर ले आना है कोई कहाँ से आते हैं कोई कहाँ से आते हैं कोई वेदांत से आते हैं कोई बौद्ध से आते हैं कोई योग से आते हैं किसी ने कैसा संस्कार ले लिया किसी ने कैसा संस्कार ले लिया है उनको पता नहीं तो मैं कहाँ हूँ यानी उनको पूर्णता का लक्ष्य हो जाए वहाँ तक उसको ले आते हैं फिर उसकी लाइन क्लियर है एक दफे तो क्रम में प्रवेश हो गया फिर ऑटोमेटिक इसके जो परिणाम है वो तो आगे बढ़ने लग जाते हैं ऐसी व्यवस्था निष्ठिरता को अथवा ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रतीति को क्या अर्थ कर दिया निष्ठिरता को ज्ञानी का काम है हम तो ज्ञानी हुए नहीं मरण के काल में हमारा क्या हो जाएगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे कोई बात नहीं ज्ञानी के मार्ग पर चलना है ऐसी कोई यथार्थ प्रतीति आ गई है तो मुझे मेरे स्वचन से नहीं चलना ज्ञानी के कहे हुए मार्ग पर मुझे चलना है इसकी आज्ञा में चलना है ऐसी यथार्थ प्रतीति आ गई यानी दृढ़ निर्धार हो गया तो भी उसको मरण के काल में वो शरण सही है ऐसी बात तो मरण काले शरण सही होने पर भी होने पर बहुत करके फिर से देह धारण नहीं करेगा अथवा मरण काल में देह का ममत्व भाव का अल्पत्व होने से वह निर्भय वर्तता है उसको भय नहीं होता मरण काल ज्ञानी को मरण का भय नहीं और ऐसे मुमुक्षु को भी मरण का भय नहीं होता न मरण का भय है आध्यात्मिक परिणाम को बहुत बिगाड़ता है, बहुत नीचे ले जाता है। तो जिसको हो जाता है उसको पता चल जाता है क्या क्या हो जाता है, सब नीचे ले जाता है। मरण का जो भय है, दूसरे दूसरे प्रसंग में भी भयान्वित होता है, जीव के परिणाम का ठिकाना नहीं रहता है। जहां जहां भी नुकसान होता हो, जिस जिस तरह का नुकसान होता हो, वहां भी परिणाम बिगड़ता है। तो मरण के काल में तो कितना बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसकी तो पूरी दुनिया डूबती है। ये व्यवहारिक प्रसंग में तो उतना नुकसान नहीं है, यहाँ तो पूरी दुनिया डूब जाती है इसके। तो बहुत उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं। अगर ज्ञानी मिल गए और इनके शरण में आ गया तो ये मरण काल भी शरण सहित है। तो शरण रहित जीव नहीं है, उनको शरण मिल गया है।
આમાં નિમિત નૈમિત શું ચાલે તે વખતે એકદમ છેલ્લા સ્ટેજ છે અને પોતે ભાવ ભાષણ વાળું છે, જ્ઞાની હાજર છે, પોતે ભાવ ભાષણ વાળો છે અને છેલ્લી સ્ટેજ છે મુમુક્ષ, ત્યારે નિમિત નૈમિત
ભાવ ભાષણ વાળો હોય ને, સ્વરૂપ નું ભાવ ભાષણ તો પામી જાય
નહીં, એટલે પેલો આપણે પેલો સંપર્ક કરો, સોરી સાર કરો નહીં, કઈ શકે નહીં, કરો
પેલો સંપર્ક વાળો,
અને ગુરુ હતા માજો અને એનું જે જવાની તૈયારીમાં છે
બીજું કઈ દેખાય નહી, શરીર જાય તો ભલે જાય, રે તો રે ને જાય તો જાય, જે થવું હોય તે થાય, દરકાર છૂટી જાય, છૂટી વાત દરકાર બહુ કૃપા કરી છે આ લોકો પર, ઘણી કરુણા કરી છે, કેટલાક તો સમીપ આવ્યા હતા ને, આ તો છે પ્રસંગ, તો બીજો છે માણેકચંદ ભાઈ કરીને મહાત્મા મોક્ષો ના દેશ ત્યાંના ખબર મળ્યા છે, તો પોતે લેટર ઓફ કોન્સોલેશન લખે ને, આપણે વળતીઓ કહે છે, દિલાસા પત્ર, દિલાસો આપે, સામાન્ય શોક ન થાય, આ દિલાસા પત્ર છે, પોતે જાણે છે કે તત્વ તત્વથી ભરેલી ચીજ છે, પત્ર તો દિલાસો પત્ર છે, પણ એના તત્વ ભરેલી છે। જો મરણ કાળે તો ભાઈનો કોઈ હદ નહીં રહે, એટલે એટલો ભાઈ થઈ જશે, કેટલા ભાઈ હોગા, બે હદ ભાઈ હો જાયગા, પરિણામ સેકન્ડોમાં એટલા બધું બિગડેગા કે બહુભાગ મનુષ્ય બેશુદ્ધ અવસ્થાને બે ત્યાગ કરતા, એટલા પરિણામ બિગડતા હોય, શુદ્ધ સાફ ચલી જાય, મર જાઓ ગામે,
એની પીડાને કારણે કે ત્રીજું કોઈ છૂટવાને કારણે છે,
વાકુળતાને કારણે, દુઃખના કારણે, ભયના કારણે,
પીડાને કારણે,
ભય પીડા તો પછી થશે, પણ ભયથી બેશુદ્ધ થઈ જાય છે,
એટલે સંજોગોને સંજોગોને છૂટવા દેતા,
એને સમજ મારી આખી દુનિયા ડૂબી જાય છે, એને એમ થાય અરે હું મરી જઈશ, હું મારો નાશ થઈ જશે ને, હું મરી જઈશ એટલે મારો નાશ થઈ જશે, એને આખી દુનિયા ડૂબી જાય, એટલે એટલો બધો શાપ, એટલો બધો ભય ઉત્પન્ન થાય છે, બહુભાવ મનુષ્ય શુદ્ધ અવસ્થા મેં આ જાતે હૈ, ફિર ઉસકે કામ છોડતે હૈ,
અનકોન્શિયસ થઈ જાય,
અનકોન્શિયસ થઈ જાય, લગભગ મરણ પહેલા કોઈ દિવસો તો કોઈ કલાકોમાં બેશુદ્ધ અવસ્થા હોય છે,
જાગૃતિ હોય તો જ્ઞાનીની જાગૃતિ,
જાગૃતિ એક જ્ઞાનીને રહીએ અને એક જ્ઞાનીનું શરણો લેવાનું હોય એને રહીએ, બેને રહીએ,
એ વાત ચાલે,
ત્રીજાને રહેવી મુશ્કેલ છે, કેમ કે એનું પરિણામમાં કંટ્રોલ નહીં રહે, એનું પરિણામ છે પોતાના કંટ્રોલમાં, આધારસ્તંભ બે છે, પણ પરિણામને કંટ્રોલ રહેવા માટે એક પોતાનું પરમાત્મા સ્વરૂપ છે અને એક નાની પુરુષ, એ ઓળખ્યા હોય તો, ઓગે નહીં ઓળખ્યા હોય તો, બાકી તો પછી જીવને કોઈ શરણ નથી, અને લગભગ દુર્ગતિમાં જાય છે, મનુષ્ય હોય છે, સામાન્ય જીવન જે અત્યારનું મનુષ્ય છે એ તિર્ય જ ગતિને લાયક છે, બહુ પાપ ન કરતા હોય તો તિર્ય જ ગતિને લાયક છે. પછી તો શું છે કે જયારે મન હતું અને વિવેક ન કર્યો છીએ, એનો સદુપયોગ ન કર્યો તો મન રહી થઈ જાય, અથવા સંગીત પંચેન્દ્રિય થાય તો વિવેક તો કેટલો ઘટી જાય છે, આ કૂતરો અને સુઈ જાય છે, શું વિવેક છે? વિવેક ગુમાવ્યા પછી તો એ દશા થઈ છે, પછી વિવેક હોય પણ ક્યાં થઈ? જયારે વિવેક પોતે જ ગુમાવ્યો છે ત્યારે તો વિવેક શૂન્ય થયા પછી તો તિર્યંચની દશા થાય છે, પર્યાય થાય છે, સીધો નો ચાલ્યો આગળ ચાલ્યો, પોતાનું હિત કરવા માટે એ તો તત્વા સૂત્ર નું ઉમા સ્વામી નું સૂત્ર છે. મનુષ્ય ગતિ નું કારણ શું? સરળ પરિણામ ઓછી વૃત્તિ છે જે મનુષ્ય પર્યાયમાં સ્ત્રી પુરુષ અને નપુંસક ત્રણ છે, પુરુષ પર્યાયમાં વિશેષ સરળતાને લઈને પુરુષ પર્યાય છે, એથી ઓછી સરળતા અથવા માયા પર્યાય છે, એથી વિશેષ માયાચારમાં નપુંસક પર્યાય, ત્રણે મનુષ્ય જ છે પાછા, આ તો મનુષ્ય ગતિ છે. પછી તો ઓલા નામ કર્મને હિસાબે જુદી જુદી પર્યાયો થાય છે, પણ એમાં સરળતાની ડિગ્રી ઘટતી જાય છે અને માયાચારની ડિગ્રી ઘટતી જાય છે. પુરુષો સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હોવા જોઈએ, એવું કઈ છે સરળતા વિશેષ છે, પરિણામ કરતા પુરુષ પરિણામ સરળતા વિશેષ ના ફળ માં છે. પછી પુરુષ થી વધારે માયાચાર કરે તો પાછો સ્ત્રી થાય, પણ પુરુષ હોય અને માયાચાર ના પરિણામ વિશેષ કરે તો સ્ત્રી જ બંધાઈ જાય, મુખ્યપણે ચારિત્રિક એ પ્રસંગો તો છે જ, એ તો થયો છે એના દિવસ, એમાં તો તીવ્રતા વધે થોડી વિશેષ થઈ જાય, કેમ કે જે માયાની પ્રકૃતિ છે એ શ્રદ્ધા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આમ માયાની પ્રકૃતિ આમ ચારે ચારિત્ર ગુણની છે, ક્રોધ માન માયા ને લોભ અનિકાર મંદિર પ્રત્યાખ્યાન અપ્રત્યાખ્યાન ને સમજેલા એ છે ચારિત્ર ગુણની પ્રકૃતિ, પણ ચાર માંથી વધારે દર્શનો સાથે સંબંધ માયા ને છે, ક્રોધ ને લોભ ને માન ને નથી માયા ને. નારકીમાં ક્રોધ ની વિશેષતા છે, તિરિંચમાં માયા ની વિશેષતા છે, દેવલોકમાં લોભ ની વિશેષતા છે, પણ બીજા ત્રણ હારે હોય એમ, એકલા નો એકલો ન હોય, પણ વિશેષતા વિશેષ છે. અહીંયા માન જલ્દી ચડી જાય, મુખ્ય થઈ જાય માન, અહીંયા પણ માયા છે એ સમ્યત્વ ની વિરુદ્ધ જાય છે વધારે. જેમ સરળતાથી મનુષ્ય થયો અને વધારે સરળતાથી પુરુષ મનુષ્ય થયો, એમ વધારે સરળતા પારમાર્થિક સરળતા જો સેવે તો સમ્યક દર્શન
પામે.
પારમાર્થિક સરળતા નું સ્વરૂપ એ કે પોતાના હિત માટે સરળ પરિણામે થઈને હિત સાધે, અપને હિત કે લીએ ઓર સરળ પરિણામ કરકે હિત કી સાધના નું અગ્રેસર હોય. आत्महित की मुख्यता हो गई। आत्महित की मुख्यता सर्वोत्कृष्ट हो जाए तो मोक्ष मार्ग में आने के लिए उनको ज्यादा विटंबना नहीं रहेगी। और सरल उपयोग हो जाए तो क्या होता है कि राग है वो अपने बगल में है, इधर उपयोग नहीं जाके इधर जाना है, इधर जाना वो टेढ़ा है, इधर जाना वो सरल है। उपयोग उपयोग में रह जाए और बगल में राग में भी स्पर्श नहीं करे, उससे भी भिन्नता कर ले तो सरलता नहीं नहीं की उसको, वरना असरलता हुई। सरलता का आर्टिकल लिखा है वो उसमें वो बात समझ लिया है। पारमार्थिक सरलता वो है कि उपयोग सरल हो करके स्वरूप में समा जाए, यही पारमार्थिक सरलता है। और उपयोग टेढ़ा होकर के राग के साथ संबंध करता है, एकत्व करता है, वो पारमार्थिक असरलता है। क्यों इधर आगा चलता होगा, उसको उसमें रहने दे, राग को राग में रहने दे, असरलता सरलता का हद है, वो चरम सीमा है। जितने भी माया के परिणाम बढ़ जाता है उतनी असरलता बढ़ी, उतना वो सम्यक श्रद्धा से दूर जाएगा, मिथ्या वृत्ति तीव्र हो जाएगा उसका।
सुखानी जी ज्ञान ने राग जुदा से एकदम सरल गाड़ी सरलता अभ्यास के लिए जाते
हैं, इसको तो हम दूसरे दूसरे ढंग से कहते हैं। सुगानी जी ने राग और ज्ञान भिन्न है उतना मात्र शब्द नहीं सुने थे, मात्र उतने शब्द नहीं सुने थे और उस शब्द के अर्थघटन मात्र नहीं समझे थे, लेकिन वो आगे जा करके उन्होंने गुरुदेव को परिणमते हुए देख लिया था। क्या हुआ कि गुरुदेव जब कहते थे तो अपरिणामी रह करके नहीं कहते थे, क्या ज्ञानी उपदेश देते हैं वो अपना परिणमन करके उपदेश देते हैं, और ज्ञानी उपदेश देता है तो अपरिणामी रह करके उपदेश देता है, उसका ऐसा परिणमन नहीं है। कहता है कि राग और ज्ञान भिन्न, लेकिन उनको भिन्न नहीं है, वो तो एकत्र होना पड़ा है, तो उसका तो परिणमन नहीं है, तो अपरिणमन है उसका। परिणामी रहकर के उपदेश देना ये बड़ा अनर्थ है, तो कृपा जी एक पत्र दे सकते हैं। परिणामी रहकर के उपदेश देना बहुत बड़ा अनर्थ है, सत्संग करना दूसरी बात है, उपदेश देना दूसरी बात हो जाती है, उपदेश नहीं देना।
अपरिणामी रही नहीं
है, अपरिणामी इतने सोचे कि कैसे इस ये वो एनो परिणाम नहीं, एनो नाम अपरिणामी, पत्रिकारी अपरिणामी नहीं। शब्द तो एक छे, प्रकरण ही नहीं चालतू, त्रिकाली नो प्रकरण नहीं चालतू आया तो अपरिणाम लेने उपदेश देशे एटले शुं छे, उपदेश अनुसार परिणाम नहीं करता, तो बहु मार्गदर्शन है। पछी ज्यारे ज्यारे सत्संग नी अंदर जब जब सत्संग के काल में निश्चय के प्रति निश्चय का विषय सामने आ जाए तो अपना निश्चय स्वरूप के प्रति थोड़ा और वजन डाल देना,
बराबर,
क्योंकि आश्रय करने का ही है, तो उसका वजन डाल करके इस बात को उठाना। व्यवहार के विषय में वजन उठा लेने का तरह वलन होना चाहिए, ऐसा वलन को ख्याल में रखना, ऐसे स्वाध्याय करना, ऐसे सत्संग करना, वजन देने में कहीं कहा वजन उठा लेना है, कहा वजन डालना है, वो ख्याल में रहना चाहिए। ऐसे माया की प्रकृति को ध्यान रख लेना है। कहीं भी मायाचार करना नहीं है, और कभी ऐसा लगे कि यहाँ मायाचार नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान को बर्बाद करना, लेकिन मायाचार
नहीं करना।
ऐसा गुरुदेव को परिणत हुए देखा था,
गुरु का काल पहले,
इसलिए गुरुदेव की पहचान चलते व्याख्यान में हो गई। इतनी योग्यता लेकर के आए थे कि प्रथम दर्शन में ही पहचान हो गई, तो पहला संकेत हो गया वहां उनको। संकेत का बीज तो बो दिया, चालू व्याख्यान में बो दिया था, ऐसी बात थी। गुरुदेव ने ये बात जब पढ़ी, वो ग्रंथ बनाया, और गुरुदेव ने ये बात पढ़ी तो गुरुदेव को लगा कि है कोई यदि कोई योग्यता वाला निकला कि ऐसी बात सुनते ही उसने हमारा परिणाम को पकड़ा। ऐसी योग्यता होती
है,
परिणाम को पकड़ लिया।
क्या बोले थे, क्या बोले थे गुरुदेव के लिए?
गुरुदेव तो बोले थे कि बहुत तेज पुरुषार्थ है उनका, हमारे अंतर्ज्ञान में तो ऐसा आता है। कैसे बोले, अंतर्ज्ञान में तो ऐसा आता है कि वो वहाँ यहाँ से निकल करके वैमानिक देव में गए हैं ऊपर, और वहाँ से निकल करके उतना झड़प करेंगे, नहीं गुजराती भाषा है, झड़प करना जैसे वो चित्ता छलंग मारता है ना, ऐसा छलंग मारेगा कि एक जो मनुष्य भव में जाएगा वही मनुष्य भव में निर्वाण पद को ले लेगा। हमारे तो चार भव है, ऐसा करके बोले थे, हमारे तो चार भव है। चौथे भव में हम जब नवो सिद्धानम दीक्षा के काल में नवो सिद्धानम करेंगे तब हमारा नमस्कार उसको पहुंचेगा, ऐसा बोले थे। बहुत गुरुदेव को भाव आया,
अपने शिष्य के लिए था बोले,
शिष्य गुरु का सवाल नहीं उनको, वो तो अपन ऐसे लेते हैं, उनको शिष्य गुरु का कोई सवाल
नहीं है। नहीं। नहीं।
गुरु वे अच्छा चल भी गया था ज्ञान वायु आ गया, केवल ज्ञान था વિકલ્પ ના ભાગ કેવળી જ્ઞાની, કેવળ જ્ઞાની ને હોય તો વિતરાગ થયા છે, તો વિતરાગ ને તો રાગ નો હોય એવો અર્થ ત્યાં નથી બેસતો, વિતરાગ ને રાગ હોય એવું તો કઈ બેસાડે નહીં। કેવલી ભગવાન હે તો રાગ નહીં હોતા, રાગ અનુસાર ભયાનો શાદી કી ક્રિયા ભી હોતી હૈ, લેકિન વો જાન લેતે હૈ किस गुरु से के कारण से मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे ऐसा गुरु कौन थे, तो अनादि अनंत केवल ज्ञान तो जानते हैं, क्षोत्र में तो सभी पर्याय तो अपना गुरु के पर्याय को जान लेते हैं, उसी का नाम उसका भी नहीं हो गया, जानने में आया वही उसका भी नहीं, ऐसी बात।
दर्शन मोहिमा एकता ने ममत्व छे, ये ममत्व ने पहली माया चरित्र मोहन ने एक अलग દર્શન મોહન માં આપણે એકતા ને મમત્વ મમત્વ કહીએ છીએ, એ દર્શન મોહન મમત્વ અને ત્યાં માયા ચરિત્ર મોહન, એ એ મમત્વ અને માયામાં ડિફરન્સ કે
આમ તો શું છે, દર્શન મોહ છે, દર્શન મોહ ની પ્રકૃતિ છે, અને ચારિત્ર મોહ છે તો ચારિત્ર ની પ્રકૃતિ છે, પણ બેને શું સંગતતા છે, મેળ છે,
મમત્વ અને માયા આ શબ્દ ની વાત,
મમત્વ એટલે અપનત્વ એટલે માયા, તમારી માયા લાગી ગઈ છે, બહુ લગાવ આપી માયા લગ ગઈ, મમત્વ જ્યાદા હો ગયા, तो सरलता से विरुद्ध है, इसमें सरलता नहीं। स्वरूप में अपनत्व नहीं करके अन्य पदार्थ में अपनत्व करना, राग में अपनत्व करना, वही असरलता है। फार्मासिक दृष्टि से तो वही असरलता है।
तो बद्धा जीव अज्ञान माया करे छे बेटा
बेटा,
तो अज्ञान जीव बद्धा माया करे छे
के जड़े नी माया करे छे। बाढ़ पहली बात થાય છે, માયા છે,
માયા છે। આપણે તો આપણે જૈન દર્શનમાં આ શબ્દોનો પ્રચાર બહુ નથી, અન્ય દર્શનમાં તો જે સંસારિક મમત્વ છે ને એને એ લોકો સંસારની માયા જ કહે છે। સંસારિક મમત્વ કો સંસાર કે માયા બોલતે હો, ક્યો માયા હૈ કે જૈસે મેરા લડકા મેં કોઈ દમ નહીં હૈ, ઉતના સુંદર ભી નહીં હૈ, ઉતના ગુણવાન ભી નહીં હૈ, ઉતના બુદ્ધિમાન ભી નહીં હૈ। तो दूसरा जो लड़का है हमारे मित्र का, वो सुंदर है, बुद्धिमान है, गुणवान है, तो भी प्रेम हमारे लड़के पर आता है, उसके पर क्यों नहीं आता है? माया है, और क्या है? प्रेम करने लायक तो वो है, उसके पर उस पर नहीं आता है, उस पर आता है, इसका क्या माया होगी? इसका नाम माया। आत्मकल्याण का प्रेम होना चाहिए। आत्मा अनंत गुणवान है, उनका प्रेम हो गए तो अनंत गुणवान है, उसका आकर्षण नहीं हो गए। और जो रजकण है उसमें कोई गुण नहीं अपना, उसका आकर्षण पर्याय वो तो कुदल के पर्याय है, वो असरलता आड़ाई चलता है, और क्या है? सीधा नहीं चलता है, आड़ा चलता है, सीधी बात है। ना जिसको ज्ञानी के मार्ग पर चलने का निर्धार है उनके माया छूट जाएगी। एक भगवान भक्ति के तीव्र परिणाम भी ऐसे हैं कि पंचेंद्रिय के विषय के परिणाम को टाल देते हैं। भगवान भक्ति देव गुरु शास्त्र सत्य उस पर तीव्र हो जाए के परिणाम फीके हो जाते हैं ना, ये जैसे तैसे चला लो, हमने तो मुख्य हो गया। तो निश्चय भक्ति में तो व्यवहार भक्ति से भी आगे की बात है।
निश्चय भक्ति में व्यवहार निश्चय भक्ति में सामान्य ज्ञानी व्यवहार भक्ति
ज्यादा रहेंगे तो फिर गड़बड़ करोगे, ये बात हो जाएगी। भोग संज्ञा में नहीं रहना,
दर्शन मोनीय कर्म नु घटे मोड़ापन था, इतने वर्तमान कर्म नु मोड़ापन तो थतु
भाव भाव पर मोड़ा थी जाए,
वर्तमान पर वर्तमान कर्म
मिथ्या संतान नु जोर भाव में घटी जाए। मिथ्या संतान नु जो परिणाम छे ना શક્તિ ઘટી જાય, અનુભાગ ઘટી જાય, રસ ઘટી
જાય, વર્તમાન પાઈ નહીં પણ પત્તામાં રહે
આ દર્શન મો
અને પત્તામાં રહે
પત્તામાં થાય એના એના ભી અનુભાગ
ઘટતા થઈ જાય, અનુભાગ ઘટી
જાય થાય એ તો ભાવની અસર દ્રવ્ય ઉપર આવે છે, થાય પત્તામાં રહેલો
તો પછી એનો અર્થ એવો થાય છે સ્થિતિ પણ ઘટી શકે। અહીંયા જેમ જેમ મોડા પણ એમ થાય વિચાર
સ્થિતિ ઘટે છે ને પ્રાય ઉપલબ્ધિમાં આવે છે ક્યાંથી 70 કોડા કોડી નો બાંધ્યો હોય એ દર્શન મો કર્મ તો ત્યાં ને ત્યાં રહીએ, સ્થિતિ એની બદલાઈ જાય, અપકર્ષણ એટલે સંક્ષેપ થઈ જાય, અલ્પ હો જાય, સ્થિતિ લંબી નહીં રહેગી। ઉધાર આયેગા વો પરમાણુ તો ઉસકી સ્થિતિ લંબી નહીં હૈ, લંબે કાલ તક ઉસકા ઉદય નહીં હો પાયેગા, યે બાત। और दर्शन होने का तो उपशम होता है, हृदय में आने पहले उसका उपशमन हो जाता है, तब सम्यक दर्शन होता है, उसको उपशम सम्यक दर्शन कहने में आता है। નાની અન્યાય કરે નઈ તો કોઈ કારણસર અન્યાય થાય પણ ખરો
લાગે
નાની ના હાથે નહીં થાય અન્યાય જ હોય ન્યાય ની દ્રષ્ટિએ અન્યાય હોય લ્યો ને બનવા જોગ છે એવું જ બને ભક્તિ થઈ ગઈ સામાજિક નો ઉદય એવો હોય ને અહીંયા વિકલ્પ નો ઉદય એવો હોય અને ચોખ્ખો અન્યાય હોય લ્યો ને આપણા ન્યાય ન હોય માની લ્યો ને તો સમય દર્શન પડી જાય કે ન પડી જાય ન પડી જાય સ્વરૂપ નો પરિચય નથી ઓળખાણ નથી એને શંકા પડી જાય અથવા અભક્તિ થઈ જાય આ ભૂલ છે આ ભૂલ છે
હજારો રીતે ચાલે છે
એક વખત એવું છે નિલામત વાત કરું છું કે ચંદુભાઈ બ્રહ્મચારી કારણ એવું બન્યું છે
આપણે તો શું છે કે આપણું આપણે જે મોક્ષોની ભૂમિકા છે એને સંભાળવું છે કે કઈ ભૂલ ન થઈ જાય રહેવા જેવું નથી પ્રાયોગિક
લબ્ધિમાં પણ આવી પ્રાયોગિક લબ્ધિમાં આવવા છતાં પડી જાય
પાછું વધી જાય જે અંતકોડું માંથી પછી સ્થિતિ વધી જાય ઉત્કર્ષણ થઈ જાય ઉત્કર્ષણ માંથી
ચાલે
ઘરમાં ઢોળફોડ કરી આવશે ખીલે બાંધવો
જોઈએ
આત્મા ના ખીલે બંધાય સત્પુરુષ ને ઓળખી ને એના ખીલે બંધાય દેહ કાલ મે મમત્વ ભાવ કા અલ્પત્વ હોવાશે દેહ કા મમત્વ ભાવ કા અલ્પત્વ હોને છે નિર્ભય વર્તતે હૈ મોક્ષ ભી નિર્ભય વર્તતે હૈ દેહ છૂટને કા કાલ અનિયત હોને સે નિશ્ચિત નહીં હોને સે કભી ભી છૂટ સકતા હૈ વિચારવાન પુરુષ અપ્રમાદ પણે સે પ્રથમ સે હી ઇસકા મમત્વ નિવૃત્ત કરને કા अविरुद्ध उपाय को साधता है, काल्पनिक उपाय को नहीं, अविरुद्ध उपाय को, सही उपाय को साधता है। और यही तुमको हमको सभी को लक्ष्य रखने योग्य, ऐसा लिखा है। प्रीति बंधन से खेद होने योग्य है, आपको प्रीति था माणिकचंद जी के प्रति, खेद होने योग्य है, स्वाभाविक है, तथापि इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं होने से उस खेद को वैराग्य के स्वरूप में परिणमन करना यही विचारवान का कर्तव्य है। खेद को सांसारिक खेद में नहीं ले जा करके वैराग्य में ले जाना, देखो ये अनित्यता अशरणता ऐसी चीज है, हमको जल्दी से जल्दी हमारा आत्म कार्य शीघ्रता से कर लेना चाहिए, ऐसे परिणाम आने चाहिए।